ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। पांचकल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस जन्माष्टमी महोत्सव के पावन पर्व पर महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए हम दो शब्द कहने का प्रयास करेंगे। वैसे महाराज श्री के मुख से कृष्ण कथा सुनने के बाद ये हमारा विचार नहीं था कि हम कुछ कहेंगे, लेकिन फिर भी उनकी आज्ञा है तो हम कुछ प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। संपूर्ण श्रीमद् भागवतम इन 6 प्रश्नों का उत्तर है। तो शौनक आदि ऋषि एक प्रश्न करते हैं, एक प्रश्न की बात करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ मिलकर के कौन कौन सी लीलाएं की ये बताइए। अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषा। तो ऋषियों को यह पता है कि भगवान कपट मानुषा, एक छद में मनुष्य के रूप में स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की इसी ब्रज भूमि में। तो जो भावुक भक्त हैं भगवान के वो इस ब्रज भूमि को प्रणाम करते हैं, प्रतिदिन इसको अपने सिर पर लगाते हैं। और आप में से जो लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ सेवा करते हैं या यहाँ पर आकर के भगवान की दर्शन, भगवान के दर्शन उनकी कथा का श्रवण करते हैं, यह बहुत सौभाग्य की बात है। तो ऋषियों के 6 प्रश्नों में से एक प्रश्न यही था कि भगवान केशव ने बलराम के साथ में मिलकर के जो लीलाएं कही हैं वो कही है, एक प्रश्न। तो श्रीमद् भागवत के 10 स्कंद में फिर शुद्ध गोस्वामी ने ऋषियों को वही सब लीलाएं सुनाई जो सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाई थी। तो भिन्न भिन्न लीलाएं हैं भगवान की। भगवान बलराम श्री कृष्ण के अग्रज के रूप में, उनके सखा के रूप में, उनके सेवक के रूप में विविध प्रकार से सेवा करते हैं। भगवान बलराम गिने चुने राक्षसों को मार देते हैं। अधिकांशतः भगवान श्री कृष्ण ही राक्षसों को वध करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो महाराज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उद्धरण दे रहे थे, इन आचार्यों के माध्यम से हमें कृष्ण लीला को सुनने और समझने का अवसर प्राप्त होता है। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की शिक्षाओं का जो समावेश है, उनका सार है वो है आराध्य भगवान ब्रजेश तनय। ये बहुत ही दुर्लभ बात है। गौड़ीय वैष्णव हमारे गौड़ीय परंपरा में, यद्यपि हम अपने को वैष्णव कहते हैं, लेकिन वास्तव में वैष्णव कौन है? जो विष्णु भक्त है, जो विष्णु के भक्त हैं वो वैष्णव है, जो कृष्ण के भक्त हैं वो कृष्ण है। लेकिन भक्तिदान सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो श्रीमती राधा रानी के भक्त हैं वो गौड़ीय वैष्णव है। तो यद्यपि जो गौड़ीय वैष्णव हैं उनका विशेष जो रुझान होता है वो होता है भगवान इस ब्रिज में जो लीला की है उसे सुनना, उसका मनन करना। तो इस ब्रिज में भगवान ने लीला की ब्रजन नंदन श्री कृष्ण के रूप में, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं आराध्य भगवान ब्रजेशन है। हमारे जो आराध्य हैं वो है ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। महाराज ने बहुत सुंदर कथा कही थी पूर्व में, रूप गोस्वामी ने किस तरह से ब्रज की लीला को, मथुरा की लीला को, द्वारका की लीला को अलग अलग प्रकार से वर्णित किया। तो गौड़ियों के एकमात्र आराध्य हैं ब्रजेश तनय, ब्रजनंदन श्री कृष्ण। जो द्वारकाधीश कृष्ण हैं वो द्वारका में लीला करते हैं और भगवद गीता का प्रवचन करते हैं, लेकिन जो ब्रजनंदन श्री कृष्ण हैं वो विविध प्रकार की माधुर्य लीलाओं का यहाँ पर संपादन करते हैं। तो ब्रज की जो लीलाएं हैं मधुरमा से भरी हुई है, ये माधुर्य धाम है ब्रज मंडल। द्वारका मंडल ऐश्वर्य धाम, ये माधुर्य धाम है, तो मधुरमा से भरी हुई है। तो श्री कृष्ण, ब्रजनंदन श्री कृष्ण ही एकमात्र आराध्य है। तद्धाम वृंदावनम, ये जो ब्रजभूमि है, ये पावन ब्रजभूमि है भगवान का, ये धाम वृंदावन धाम, ये भी कृष्ण के समान ही आराध्य है। जिस तरह से कृष्ण आराध्य है उस तरह से उनका धाम भी आराध्य है। इसलिए ब्रज के जो भक्त हैं, जैसे हम यहाँ आने के पहले कुछ भक्त थे, आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि हम जब आ रहे थे इंग्लैंड से आ रहे, तो वहाँ पर एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, भगवान के भक्त हैं, अपने इस्कॉन के ही भक्त हैं। तो पाकिस्तानी डॉक्टर इंग्लैंड में जाकर के इस्कॉन के संपर्क में आकर के वो भी भक्त बने, लेकिन वो पाकिस्तान से भक्त बन गए। तो इस्कॉन का प्रचार प्रसार पाकिस्तान में भी है। तो उस पाकिस्तानी डॉक्टर ने हमें यहाँ आने के पहले ये आग्रह किया था, उन्होंने और उनकी पत्नी ने, उन्होंने भगवान के लिए बहुत सारा कुछ उपहार भेजा। तो हमने कहा कि आप क्या चाहते हैं, हम क्या लाएं आपके लिए? तो उन्होंने कहा आप दो चीज़ लाइए हमारे लिए, एक तो यमुना का जल और ब्रज की रज, दो चीज़ लाइए। तो हमने कहा अवश्य लाएंगे। तो उनके लिए यमुना का जल और ब्रज की रज यहाँ से ले जाएंगे। तो उनकी पत्नी बहुत भावुक हो गई, कहती हमारा तो सौभाग्य नहीं है, क्योंकि अभी जो भी राजनीतिक परिस्थिति है इसमें अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो हो गया, फिर ब्रिज के दर्शन हो गए, फिर तो आपको इंडिया आने का वीजा नहीं मिलेगा। एक भक्त को कम से कम 2-3 साल लग गए इंडिया का वीजा लेने के लिए, और अभी दौर भी मुश्किल है। तो उनकी पत्नी बहुत भावुक हो गई, क्योंकि पाकिस्तान का पासपोर्ट है दोनों का, पति पत्नी का। तो ब्रिज के दर्शन कब होंगे, कैसे होंगे, कुछ पता नहीं। लेकिन उसने, उन्होंने ये प्रार्थना की, उनसे ये आग्रह किया कि आप ब्रिज की रस, ब्रिज की रज और यमुना का जल लेके आइए हमारे लिए, तो हम ले जाएंगे। तो आप समझिए, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ रह करके सेवा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण बलराम श्री राधा श्याम सुंदर गौनिताई का दर्शन करते हैं, कितनी सौभाग्यशाली, बहुत बहुत सौभाग्य है। ये सौभाग्य आपको अब केवल प्रभुपाद जी की कृपा से मिला, हम सबको प्रभुपाद जी की कृपा से मिला है, तो बहुत सौभाग्य है। आज तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, तो जिस समय भगवान कृष्ण जन्मे और नंदोत्सव हो रहा था, तो नंद महाराज से भिक्षा लेने के लिए बड़े बड़े देवी देवता भिक्षुकों के रूप में, भिखारियों के रूप में इस ब्रजमंडल में आए कि हो सकता है नंद बाबा के हाथों से और यशोद मैया के हाथों से हमको कुछ भिक्षा मिल जाएगी। अब आप समझिए कि जिनको माता यशोदा और नंद बाबा भिक्षा में कुछ भी देंगे, क्या सौभाग्य होगा उसका, क्योंकि वो नंद बाबा और यशोद मैया ये वो हाथ हैं जो कृष्ण का स्पर्श करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श करते हैं। माता यशोदा के वो वही हाथ हैं जो नंदनंदन श्री कृष्ण का स्पर्श करते हैं, उन्हें नहलाते हैं, श्रृंगार करते हैं, उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो ये वो हाथ हैं। और नंद बाबा ये वही हाथ हैं जो कृष्ण का स्पर्श करते हैं, कृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, कितने सौभाग्यशाली। तो देवता लोग, बड़े बड़े देवता लोग माता यशोदा और नंद बाबा के हाथों से भीख लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए भिखारी बन के यहाँ आ गए। ये वो ब्रजभूमि है, ये वही ब्रजभूमि है जहाँ पर ब्रह्मा जी अपने चारों सिरों को रख करके प्रणाम करते हैं और भगवान देखते भी नहीं। जब ब्रह्मा जी ने भगवान का अपराध किया तो बहुत सुंदर स्तुति की श्रीमद् भागवत में, ब्रह्म स्तुति बहुत ही सुंदर स्तुति है, लेकिन सारी की सारी स्तुति सुनने के बाद भगवान ने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कहा ठीक है अभी जाओ। तो ब्रह्मा जी ने इसी ब्रजभूमि में अपने चारों सिरों को रख करके प्रणाम किया इस ब्रजरज को। यही वही ब्रजभूमि है जिसका अपराध करने के कारण इंद्रदेव ने गोविंद कुंड में स्वयं गोविंद देव की आराधना की थी और सुरभि को आदेश दिया था कि कृष्ण का अभिषेक करो, अभी हम गोविंद की आराधना करेंगे। तो गोविंद की आराधना हुई किसके द्वारा? इंद्र के द्वारा, इंद्रदेव के द्वारा। यशोदानंदन की आराधना हुई किसके द्वारा? स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा इसी ब्रजभूमि में। और बड़े बड़े देव देवता अगर कहीं भिखारी बनना चाहते हैं तो इसी ब्रजभूमि। तो विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर कहते हैं तद्धाम वृंदावनम, इसलिए ये धाम, कृष्ण का ये जो धाम है ये भी कृष्ण के समान ही पूजनीय है, उन्हें के समान ही आराध्य है। तो ये दूसरी बात हो गई। इसके बाद साधना की विधि, रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। इसी ब्रजभूमि में ब्रजवधुओं ने श्री कृष्ण की समर्चना की, लेकिन उन्होंने कृष्ण की जो अर्चना की थी वही सर्वश्रेष्ठ है। बाकी योगी और ध्यानी जितना भी समाधि में भगवान का ध्यान करें या योग की तपश्चर्या करें, भगवान को उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जो ब्रजवधुएं हैं, ब्रज की जो गोपांगनाएं हैं, वो कृष्ण के वेणु निनाद को सुनकर के घर बार छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, पतियों को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके कृष्ण के मिलन के लिए चल पड़ती हैं। तो साधारण दृष्टि से ये वास्तव में अनैतिक है, लेकिन ये जो ब्रजांगनाएं हैं ये नीति अनीति नैतिकता अनैतिकता इस सब का विचार नहीं करती। कृष्ण ने वंशी बजाई है, वंशी बजा करके उन्होंने हमें बुलाया। जैसे भगवान अपने जो लाखों लाख उनकी जो 10 लाख गाय हैं उन सबको नामों से बुलाते हैं, तो भगवान अपने भक्तों से जो प्रेम करते हैं ऐसा प्रेम है। वो जो गैया हैं उनको नाम से बुलाते हैं, तो कोई काली है, कोई श्यामा है, तो सबको नाम से बुलाते हैं। कोई धौरी है तो उसको नाम से बुलाते हैं। और वो नाम कहाँ से आता है? भगवान की वेणु। तो जो गायें हैं वो वेणु सुनकर के, वंशी वादन सुनकर के अपना नाम पहचान लेती हैं, कृष्ण गोविंद हमें बुला रहे हैं। तो आ जाती हैं, दौड़ी हुई आती हैं। गैया जब आती हैं, दौड़ी हुई आती हैं, तो कृष्ण को चाटती हैं, उनका आलिंगन करती हैं, भगवान उनसे प्रेम करते हैं। तो गायों को कितना सौभाग्य है कि गोमाता को भगवान को चाटने का अधिकार है, उनको सूंघने का अधिकार है, उनको स्पर्श करने का अधिकार है। और भगवान गायों को अपनी माता मानते हैं, तो हम कृष्ण की आराधना करते हैं, लेकिन स्वयं श्री कृष्ण गोविंद वो गायों की आराधना करते हैं। वो गोपाल हैं, गायों को पालन करते हैं और गायों की आराधना करते हैं। तो इसलिए गो पूजा कितना महत्व है। तो गोपांगना जिस विधि से कृष्ण की अर्चना के लिए और मध्यरात्रि में सब कुछ त्याग करके चली गई थी, वही आराधना सर्वश्रेष्ठ है। तो कोई कहेगा थे तो अनैतिक है, तो इसमें नीति अनीति कोई कोई विचार नहीं है। जिस तरह से सूर्य के लिए क्या अनैतिक है, जैसे जो सूर्य की धूप पड़ती है वो तो अच्छे स्थान में भी पड़ती है और बुरे स्थान में भी पड़ती है, स्वच्छ स्थान में भी पड़ती है और गंदे स्थान में भी पड़ती है, तो उससे धूप कभी मैली नहीं होती है ना। इसलिए कृष्ण के संबंध में हमारा जो साधन है, जैसे अभी महाराज बता रहे थे कि अन्य अन्य भक्तों ने, कुछ भक्त हैं कुछ भक्त नहीं हैं, लेकिन एन किन कारण है, चूंकि उन्होंने कृष्ण का चिंतन किया और कृष्ण की आराधना की, तो वो सब के सब महिमान्वित हो गए। जैसे कंस की भी महिमा हो गई, सुबह सुबह मंगल आरती में गाते हैं कंस निषूदन, है ना, तो कंस का भी नाम हो गया। हिरण्यकशिपु का भी नाम हो गया, रावण का भी नाम हो गया। तो ये सारे जो राक्षस हैं ना, तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये कृष्ण से संबंधित हैं, इनका नाम हो गया। तो गोपाओं नाम ने, गोपियों ने भगवान के वेणुनाद को सुन करके सर्वस्व त्याग किया। सर्वस्व त्याग करके जो भक्ति की जाती है वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और यही बात ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भी कहते हैं, यही बात धर्मन्यान परित्यज्य भगवान कहते हैं। तो भगवान का जो उपदेश अर्जुन को है, वही उपदेश ब्रह्मा जी को है। ब्रह्म संहिता में कहते हैं धर्मन्यान परित्यज्य मामेकम भज विश्वसन यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवती तादृशी। सभी धर्मों का परित्याग करो और एकमात्र मेरी शरण में आओ। तो जिस प्रकार से भक्त की श्रद्धा बढ़ती है, जैसी जैसी श्रद्धा होती है भक्ति में परिपक्वता भी वैसी होती है। तो ये तीसरी बात हुई, रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। इसके बाद श्रीमद् भागवतम पुराणम अम्लम प्रेमा पुमर्त्व महान। श्रीमद् भागवत ये निष्कलंक पुराण है। महाराज परीक्षित ने 7 दिन श्रीमद् भागवत का श्रवण किया और भगवत धाम चले गए। तो श्रीमद् भागवत में भगवान के भक्तों की कथा है, भगवान की कथा है, इसलिए श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान से अभिन्न है। ये भगवान की बांग में मूर्ति है, इस शब्दों के रूप में श्री कृष्ण की मूर्ति है, स्मूर्ति। जिस तरह हम भगवान का दर्शन करते हैं मंदिर में, इसी तरह से भगवान का दर्शन श्रीमद् भागवत में भी होता है। तो भागवत का श्रवण, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित से भागवत सुना करते थे। ये महाप्रभु का अभ्यास था, गदाधर पंडित से, गदाधर पंडित जैसा वक्ता हो और स्वयं महाप्रभु जैसा श्रोता हो और उसमें कृष्ण लीला का वर्णन हो, कैसी कथा हो रही होगी। तो महाप्रभु ने अपने आचरण से सिखाया कि श्रीमद् भागवत को श्रवण करना है, क्योंकि भागवत के श्रवण करने से कृष्ण में हमारी भक्ति बढ़ती है। और ज्यों ही भक्त की कृष्ण में भक्ति बढ़ती है तो उससे कृष्ण को सुख मिलता है। हमारी भक्ति बढ़ेगी तो उससे दो लोगों को सुख मिलेगा, एक जो हमारे गुरु हैं श्री गुरु गुरुदेव उनको सुख मिलता है, दूसरे जो श्री कृष्ण हैं परमात्मा श्री कृष्ण हैं उन्हें सुख मिलता है। तो भक्त की भक्ति बढ़ने से गुरु को और कृष्ण को सुख मिलता है। और भक्ति के जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है, कृष्ण को सुखी करना। और भक्ति बढ़ती कैसे है, जब गुरु सुखी होते हैं। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादा न गति कुत्वापि। तो हमारी भक्ति बढ़ने से हमारे गुरुदेव और स्वयं श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, उन्हें सुख मिलता है। जैसे इत ब्रज धाम है, श्रीमती राधा रानी के धाम है, श्रीमती राधा रानी भगवान की हिलादनी शक्ति हैं। तो श्रीमती राधा रानी सब समय केवल एक ही चिंता में रहती हैं कि कृष्ण कैसे सुखी हों। और कभी कभी उन्हें लगता है कि कृष्ण उनसे अधिक चंद्रावली या ललिता या विशाखा इन सखियों के प्रति अधिक आकृष्ट हो रहे हैं। तो श्रीमती राधिका का यह भाव है कि क्यों कृष्ण अगर इनके प्रति अधिक आकृष्ट हैं तो मैं इनका संयोग करा देती हूँ। तो कभी कभी श्रीमती राधा रानी स्वयं ललिता सखी का या विशाखा या चंद्रावली का तथाकथित विवाह करा देते हैं श्री कृष्ण से, ताकि कृष्ण सुखी हो जाए। तो कृष्ण के सुख की एक कामना कि कृष्ण सुखी हो। अभी यहां पर कृष्ण को सुखी करने के लिए क्या करना है, तो अच्छा भक्त बनना है बस। क्योंकि हमारे अच्छे भक्त बनने से गुरु और कृष्ण दोनों सुखी होंगे, तो अच्छा भक्त बनना है। अब इस ब्रजभूमि में अच्छा भक्त बनने के लिए, उत्तम भक्त बनने के लिए सारी की सारी सुविधाएं हैं। जो पंच महासाधन है उन सब का अच्छे प्रकार से यहाँ पे पालन हो सकता है। मथुरा वास, श्रीमद् भागवत का श्रवण, भक्त संग, श्रीग्रह का आराधन, हरिनाम संकीर्तन। तो भक्ति रसामृत सिंधु में पांच महासाधन बताए हैं, और ये पांच महासाधन है यहाँ पे ब्रज में रह करके कर लिए तो भगवत धाम जाना सुनिश्चित है। तो ब्रज में यही चिंता है, कृष्ण सुखी हो, गोविंद सुखी हो, माता यशोदा की सुबह से संध्या तक, सुबह से शाम तक यही चिंता है कि कृष्ण सुखी हो। गोपियों की भी सुबह से शाम तक यही चिंता है कृष्ण सुखी हो। गायों की भी यही चिंता है कि कृष्ण सुखी हो। तो ये गोपियों का प्रेम है, ये ब्रजवासियों का प्रेम है। इस प्रेम को पाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण तरसते हैं। और कभी कभी जब उनके मन में यह प्रश्न आता है कि ब्रज वधुओं ने, ब्रजवासियों ने जिस प्रकार से उन्हें स्नेह किया, उनसे प्रेम किया, अब उसका बदला कैसे देंगे, अब उससे उसका ऋण कैसे चुकाएंगे, तो स्वयं श्री कृष्ण अपने आप को अक्षम पाते हैं। भगवान स्वयं सोचते हैं कि मैं तो ये ऋण को चुका ही नहीं सकता, तो इसलिए भगवान कहते हैं न पारे हम निर्वध्य संयोजा। हे गोपियों, मैं आपके द्वारा किए गए इस प्रेम को नहीं चुका सकता, इस ऋण को नहीं चुका सकता, इसलिए मुझे ऋणी रहना ही स्वीकार है। तो भगवान ब्रज गोपियों के चिर ऋणी हैं, क्योंकि उस ऋण को चुका नहीं सकते। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में बच्चों को सामान्यतः अपने माता पिता का ऋणी होना चाहिए, होना चाहिए, इसलिए हम कह रहे होना चाहिए, क्योंकि आजकल नहीं होना चाहते। आजकल माता पिता का सम्मान लोग नहीं करते इस पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर के। तो माता पिता बहुत दुख की का जीवन व्यतीत करते हैं इस कलयुग में। तो माता पिता का ऋण कभी नहीं चुका सकते। जैसे भगवान जब ब्रज की लीलाओं का समापन करके और कंस के कारागार में वसुदेव देवकी से मिले, तो वसुदेव देवकी बहुत रोए और भगवान भी रोए। तो भगवान कहते हैं, हे माता पिता, मैं कितना अभागा हूं कि मेरा जन्म होते ही आपने मुझे वहां भेज दिया, ब्रज में भेज दिया, मैं तो आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया। और वह बालक, वह बालिका, वह व्यक्ति बहुत ही अभागा है जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता। तो इस तरह से भगवान एक साधारण बालक की तरह वसुदेव देवकी से बोलते हैं। तो रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वर्गण या कल्पता श्रीमद भागवतम पुराणम अमलम। तो श्रीमद भागवत में ये निष्कलंक पुराण है, इसे भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीलाएं हैं। आप श्रीमद भागवत पढ़िए और भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए। तो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीमद भागवतम के इतने उद्धरण दिए हैं कि आपको ऐसे लगेगा जैसे भागवत ही पढ़ रहे हैं। तो भक्ति का वर्णन करने के लिए श्रीमद भागवत के उद्धरण दिए। हमारे इस संप्रदाय में श्रीमद भागवत की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु श्रीमद भागवत का श्रवण किए, जैसा आप हम पहले कह चुके। और इसके बाद श्री सनातन गोस्वामी, उन्होंने श्रीमद भागवत की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की। उन्होंने बृहद भागवतामृत लिखा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की ब्रज लीलाओं की प्रतिष्ठा की गई है, बृहद भागवत। तो हमारे आचार्यों में श्री सनातन गोस्वामी, उन्होंने श्रीमद भागवत की प्रतिष्ठा की। उन्हें स्वप्न में एक बार किसी ब्राह्मण ने श्रीमद भागवत का दान किया था, तो सनातन गोस्वामी ने श्रीमद भागवत की प्रतिष्ठा की। इसके बाद जीव गोस्वामी ने श्रीमद भागवत के ऊपर इसके दर्शन को प्रकाशित करने के लिए 6 संदर्भ लिखे। तो ये जो 6 संदर्भ हैं, इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद तत्व को इस तरह से प्रकाशित किया है कि कोई भी विद्वान आज तक उसका खंडन नहीं कर पाया। महाप्रभु का जो सिद्धांत है, आज तक कोई विद्वान 6 संदर्भ में प्रकाशित और जो दर्शन है, गौड़ीय वैष्णव दर्शन है, उसका खंडन नहीं कर पाया। ये अचिंत्य भेदाभेद दर्शन है, इसको अकाट तर्कों से जीव गोस्वामी ने 6 संदर्भ में प्रकाशित किया। तो श्रीमद भागवत निष्कलंक पुराण है। भागवत को पढ़ने से, सुनने से कृष्ण में भक्ति बढ़ती है, भगवान में प्रेम बढ़ता है। इसलिए हमारे इस्कॉन में ये व्यवस्था है कि भागवत श्रवण करना चाहिए प्रतिदिन, नित्यम भागवत सेवया। रोज भागवत श्रवण करने तो रोज भक्ति बढ़ेगी। और इसके बाद जो 5वां जो तथ्य है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, प्रेमा पुमर्थ महान। वैसे तो 4 पुरुषार्थों की बात चर्चा होती है शास्त्र में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लेकिन महाप्रभु इसको नहीं मानते। हमारा जो संप्रदाय है, महाप्रभु की शिक्षाओं पर आराधे थे। महाप्रभु 4 पुरुषार्थों को बाह्य मानते हैं। महाप्रभु कहते हैं 5वां पुरुषार्थ प्रेमा पुमर्थ महान, जो प्रेम है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है। ये प्रेम की प्रतिष्ठा करते हैं। तो भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है, संबंध अभिधेय प्रयोजन, श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेदों की शिक्षाओं को 3 भागों में बांट दिया, संबंध, संबंध ज्ञान, अभिधेय, कृष्ण को प्राप्त करने की विधि, भगवान की भक्ति, भगवान की निश्चल भक्ति और प्रयोजन श्री कृष्ण प्रेम, भगवान श्री कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम, यही जीवन का पंचम पुरुषार्थ है। तो ये सब इस ब्रज भूमि की ब्रज रज के प्रभाव से सबको प्राप्त हो सकता है। इसलिए यहाँ पर रहने वाले जो महात्मा हैं उनके जीवन का एक लक्ष्य होता है कि हमें इस ब्रज रज की प्राप्ति हो, ये लक्ष्य ब्रज रज की प्राप्ति हो, क्योंकि इस ब्रज की रज में श्री कृष्ण की भक्ति, उनका प्रेम कूट कूट के भरा हुआ है इसी ब्रज रज में। तो महात्मा लोग सारा जीवन साधन भजन करते हैं, केवल एक लक्ष्य है ब्रज रज की प्राप्ति। इसी ब्रज की रज में षड गोस्वामी जैसे महाभागवंत की रज मिली हुई है। इसी ब्रज रज में श्री कृष्ण के चरणारविंद से निष्कृत जो उनकी रज है वो लगी हुई है। इसी ब्रज रज में जो गोपियां विशुद्ध प्रेम में, कृष्ण प्रेम में प्रेमाकृष्ट होकर के जब चलती थी, रुदन करती थी, कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करती थी, उनके चरणों की रज इसी ब्रज भूमि में समाई हुई है। तो इसलिए महात्मा लोग अपनी सारी तपस्याओं को, अपनी सारी साधनाओं का फल यही चाहते हैं, इस ब्रज रज की प्राप्ति को, क्योंकि इस ब्रज की रज में कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की भक्ति कूट कूट के भरी हुई है। तो हम इस ब्रज रज को प्रणाम करते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आज भगवान श्री कृष्ण की इस जन्म तिथि के महोत्सव पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।